चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुए तिनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इसमें ज्ञान का नाम नहीं आया, इसमें योग का नाम नहीं आया। कल्याण प्राप्ति के और भी कई साधन शास्त्रों में आते हैं, ध्यान की बात आती, वो नहीं आई। वो किस में आ गई? भगवान में आ गई। और इस तत्व को जानने वाले जो महापुरुष हैं उनमें आ गई। भगवान को भक्ति जितनी प्यारी लगती है उतना उनको कोई प्यारा नहीं लगता। भक्ति के अंदर भगवान भक्त के कल्याण में लगते हैं और उस समय भगवान को भक्त के कल्याण करने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। ज्ञान के अंदर साधक को अपनी तरफ से अपना साधन करना होता है। भक्ति में भगवान पर ये साधक अवलंबित रहता है, बिना किसी पक्षपात के भगवान भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि साधना ही ऐसी। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषां अहं समुद्धरता। जो अपना सब काम मेरा ही समझ के करते हैं, इस काम से मुझे क्या मिलेगा इधर विचार नहीं करते, ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं उनका उद्धार करने का काम मेरा होता है। उन्हीं भक्तों के क्रम में अपन कई भक्तों की कथा सुनते आए। अब उद्धव जी का नाम आया। उद्धव जी भगवान के ही वृष्णि वंश में यदुवंश में थे और दूर रिश्ते में भगवान के लगते थे। कोई तो कहता है ये भगवान के चाचा लगते थे। कभी कभी ऐसा होता है किसी आदमी की उम्र तो बड़ी होती है, किसी की उम्र छोटी होती है, छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र वाले के चाचा लगता है, ऐसा देखा है? बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि साहब मेरा पद में ऊंचा है, ये मेरा काका लगता है, चाचा लगता है। ये मेरे लागती में मामा लगता है, तो बड़ों के पैर छूते हैं, पैर छूते हैं उसको। ऐसे उद्धव जी बड़े थे। भगवान की क्या बताया, भगवान तो भीमसेन को पैर छू के प्रणाम करते और भीमसेन भगवान से पैर छुआ तक ठीक खड़े आशीर्वाद देते। भीमसेन तो बहुत विचित्र पात्र था। मां ने कहा कि बेटा तुम लोग भगवान के भोग लगा करके और फिर भोजन किया करो। युधिष्ठिर वगैरह सब भोजन लगा भोग लगाते, मंत्र बोलते। भीमसेन ने कहा कि अब भोजन सामने रखा है, भूख लगी हुई है, अब बैठे बैठे मंत्र बोलेंगे, समय तो इसी में निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब देखो कोई शास्त्र में मंत्र नहीं आता। उन्होंने क्या अपने पास एक मुदगर था, गदा, गदा ऊपर फेंकी कि हे कृष्ण भगवान आना तो आ जाओ, नहीं तो गदा से मेरा सिर फूटेगा, मुझे पता नहीं है। सिर नीचे कर दिया, भगवान आ गए और हाथ पकड़ लिया, गदा पकड़ ली कि ये कोई तरीका है तेरा कि महाराज अब ये इतना श्लोक बोलते हैं, मेरे को भूख लगती है, खाता भी ज्यादा होगा। भगवान ने कहा तेरे को भूख लगाने की जरूरत नहीं है, तेरा भोग समझ लेंगे, तू जी लेगा इसमें, मैं तो मेरा भोग समझ लूंगा। ऐसे भगवान की भगत। तो भीमसेन उम्र में बड़े थे, भगवान छोटे थे। अब कहां भीमसेन अकल का ठस आदमी और कहां संपूर्ण बुद्धि के अधिष्ठात्री देवता भगवान, पर लीला के अंदर वे बड़ा मानकर उसको प्रणाम करते थे। ऐसे ही उद्धव जी को भी भगवान प्रणाम करते थे। उद्धव जी की और भगवान की एक बार खूब बातें हुई। भगवान ने कहा उद्धव जी आप हमसे कभी मिलने के लिए ब्रज में नहीं आए। तो उद्धव जी ने कहा कि ब्रज के अंदर आपसे मिलने आया कौन, आपके मां बाप ही नहीं आए, मैं कैसे आऊं। मां बाप कौन, वसुदेव जी आए क्या मिलने के लिए। कंस ने जब उनको जेल खाने से छोड़ दिया तब वे स्वतंत्रता से घूम सकते थे, ब्रज में आए कि नहीं आए, क्यों नहीं आए। भगवान ने कहा वो इसलिए नहीं आए कि जब मैंने अवतार लिया था तो उन्होंने मेरी व्यापक रूप से स्तुति की, निर्गुण निराकार समझ करके स्तुति की, था तो मैं सगुण साकार है, छोटा बच्चा उनका बना हुआ मेरा रूप मैंने उनको दिखाया, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म दिखाए, सब दिखाया, पर वो तो मुझे व्यापक तत्व रूप से परमात्मा तत्व से जानने लगे, तो उनको तो मैं जान गया ठीक है, उनका और हमारा व्यू कभी है नहीं, क्यों मिलने आए। तुम नहीं आए मिलने बताओ, मैं तो याद करता था कि उद्धव जी आए मिले खेले कूदे। उद्धव जी ने कहा कि मेरी भी साधना ज्ञान की है, मैं भी अपने हृदय में जो ये आत्म तत्व भाषित होता है इसी को कृष्ण का रूप मानता हूं। कृष्ण का रूप मानने के कारण से मेरा और आपका कोई मिलने का या बिछोड़ने का प्रश्न ही नहीं। मैं अपनी आत्मा में मस्त हूं। भगवान ने कहा अच्छा तुम मस्त होना कि हां, ये आत्मा की मस्ती तुम जाकर के हमारी गोपियों को सिखाओ। गोपियां मेरे लिए रो रही है, बिलख रही है, नंद जी रो रहे हैं, यशोदा जी रो रही है, वहां का जड़ चेतन सारा ब्रज है वो मेरे लिए व्याकुल हो रहा है, तुम जाओ और सबको शिक्षा दे के आओ। उद्धो तुम ये निश्चय जानो मनवच क्रम में तुम ही पठावत ब्रज को करो पयानो, तुम ब्रज की तरफ पयाना करो, ब्रज में जाओ। पूर्ण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेखन रूप जाति कुल नाई जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन को आव विरह न मन में भाषती, ये ज्ञान तुम्हारा गोपियों को देकर गया हो। बताओ तुम सही बोलते हो कि संसार में रोना धोना किस बात का? हमारा स्वरूप कभी भी हमसे गायब होता नहीं तो रोना किस बात का? हमारे स्वरूप में कोई नई चीज आकर मिल नहीं सकती तो हंसना किस बात का? बताओ उद्धव, तुम बहुत ठीक हो। ये मत दे गोपिन को आवं विरह मन में भाषती, तुम जाकर करके उनको बताओ कि क्यों विरह करती हो तुम। सूर तुरत ये जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, एक परब्रह्म परमात्मा के बिना और किसी की भी सत्ता नहीं, वही वो है। अब उस परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता तो रोना किस बात का? संसार में रोते क्यों है? और खूब राजी होते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं, हंसना किस बात का? रज्जब रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन प्यार। संतों ने भी कहा कि रोना हंसना क्यों? ये घर में कोई प्राणी मर गया तो आ जाएगा रोने से? नहीं आएगा। फिर रो क्यों? अब तो भाई बच्चे लोग इनके साथ भी हमारा वियोग होगा। गए सो आवण के नहीं और रहे सो जावण त्याग। किसके लिए रोते हो? इसलिए ये बात जाकर के तुम गोपियों को सिखाओ। भगवान ने ये बात क्यों कही उद्धव जी को? कि उद्धव जी भगवान के पास बैठे हुए एक एक बात कहते थे कि प्रभु आपका जन्म होता ही नहीं, फिर जन्म क्यों लिया? आप तो सारे संसार के उत्पादक हो, फिर आपने मां बाप क्यों बनाए? आप सर्वत्र विराजमान हो तो फिर देवकी के गर्भ में आपका बड़ा होना ये कैसे संभव हुआ? भगवान ने एक ही बात कही कि देखो जो युक्तियों से सिद्ध नहीं होता है और फिर भी जो चीज होती है वो लीला है, लीला है, लीला है। टीबी के ऊपर खूब बढ़िया नदी का पानी आ रहा है और हमको प्यास लगी है तो टीबी वाले कांच पर जाकर के हम हाथ लगेंगे पानी मिल जाएगा, धोबे करें तो पानी मिल जाएगा? नहीं नहीं, वो तो एक चित्र है। तो जैसे वो है नहीं दिखता है थोड़ा ही दिखता है, टीवी में दिखता है, वो खूब बड़ी नदी है, ठंडी गंगा जी बह रही है, ऐसा दिखती है। और अपने को प्यास लगे जाओ जगह आचमन कर लो तो एक बूंद नहीं मिलेगी। वहां लाक्षागृह का दृश्य बता रहे, खूब लाए लगी लाए जाके टीवी के हाथ लगाओ देखे कोई हाथ जलता नहीं, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ये तो दिखता है थोड़ा ही, ये है नहीं, लाय है नहीं, दिखती है। ऐसे ही भगवान की लीला, भगवान कहते मेरा जन्म होता नहीं है, दिखता है। मैं गर्भ के अंदर रहता हूं ये दिखता है, रहता थोड़ा ही नहीं, सर्वव्यापक हूं। तो ये भगवान की लीला होती लीला। पर उद्धव जी के समझ में नहीं आए, वो तो तर्क करके बैठ गए। जैसे जैसे संसार को समझते हैं उन्हीं युक्तियों से भगवान को समझने लगे कि भाई हमारे हाथ पैर ये हैं सब काम करने के लिए, भगवान के ये क्यों है? भगवान के हाथ किस बात के लिए, काम करने के लिए? तो भगवान की शक्ति सीमित थोड़ी है कि वे हाथ को लेकर काम करें। खूब प्रश्न किए। तब भगवान ने कहा कि देखो भाई, एक बात है उद्धव, हमारा मन नहीं लग रहा है। प्रश्न उत्तर तो कब हो, जब आदमी का चित्त खूब प्रसन्न हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, तुम गोपियों के पास जाओ और उनको कहो कि हमारे लिए रोना धोना बंद करो। वो रोती हैं तो मेरा मन दुखी होता है, और दुखी मन से देखो अपने सत्संग की बातें हो नहीं सकती, वो दुखी होता है। तो अब क्या करें बताओ। उद्धव जी ने कहा, पांचों तत्व माही एक सत्व ही की सत्ता सत्य, या ही तत्व ज्ञान को महत्व श्रुति गायो है। पांचों तत्व माही एक सत्व ही की सत्ता सत्य, या ही तत्व ज्ञान को महत्व श्रुति गायो है। तुम तो विवेक रत्ना कर कही क्यों पुनि भेद पांच भौतिक के रूप में रचायो है। तुम एक ही पांच भूतों के रूप में कैसे तुमने रचा दिया, सब कुछ एक ही हो। गोपिन में आप में वियोग और संजोग में हूँ, एक भाव चाहिए सचोप ठहरायो है। आप ही सो आपको मिलाप और बिछोह का मोह है, मिथ्या सुख दुख सब उठायो है। सब मिथ्या है महाराज, उनका रोना मिथ्या है। आप कहते हैं मैं गोपियों को बैठा याद करता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, ये भी मिथ्या है। एक ब्रह्म के अलावा किसी की सच्चाई नहीं है, फिर क्या तो गोपियों का रोना और क्या आपको यहाँ सुख मिलना। गोपियों का कभी आपके साथ में संयोग हुआ न वियोग होगा। गोपिन में आप में वियोग और संजोग हूँ मैं, एक ही भाव चाहिए सचोप ठहराए है। ये क्या आपने बात ठहरा दी, खूब बोले। भगवान कहे यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम जाओ और गोपियों को समझाओ ये। तब उद्धव जी बड़े ऐंठ ऐंठ करके चले, खूब सज धज करके और अभिमान के अंदर चले गए। या ये इस ज्ञान का पता तो अभी तक कृष्ण को ही नहीं था, और कृष्ण मेरे ज्ञान से प्रभावित हो गया। गोपियों को जाकर के ऐसा ज्ञान दूंगा, गोपिये हमारे ज्ञान को सुन करके और सुख दुख सब हटा देंगे। बड़े ठाट से चले, ब्रज भूमि में गए और वहां जाते ही उनका तो अपने आप स्वतः ही चित्त बदल गया। भगवान के चरणारविंद देखे वहां मिट्टी के अंदर धसे हुए, लोटपोट हो गए। अरे भगवान को साक्षात देखा, इतना प्रेम नहीं हुआ, और पृथ्वी पर रखा हुआ चरण चिन्ह देख करके तुम्हारी ये दशा हो गई। नंद बाबा के घर गए, नंद बाबा की स्थिति देखी, बैठे बैठे रो रहे हैं। खूब कुशल क्षेम पूछा नंद बाबा ने, और अंत में उद्धव जी को उन्होंने पूरी कृष्ण लीला सुनाई। वो सुनाते समय उनके अंदर जो प्रेम बढ़ा हुआ देखा, तो उद्धव जी देखा रे ये प्रेम नाम की चीज तो अलग ही है। फिर जाकर के गोपियों से मिले, गोपियों के पास जाकर खूब ज्ञान की बातें कही कि देखो कृष्ण ने ये कहा है, वो कहा है, वो कहा है। गोपियों ने उनकी एक बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा गोपियों ने भौरे के बहाने से उद्धव जी को प्रेम की ऐसी बातें बताई। उद्धव जी ने देखा कि अरे प्रेम दुनिया कुछ अलग ही होती है। कोई माँ बनकर भगवान के कान ऐंठता है, कोई पिता बनकर के भगवान को डांटता है, कोई क्या बनकर के भगवान को कैसे उपालंब देते हैं। ये गोपियां देखो कैसे उपालंब देती है। गोपियां जो ऐसा उलाना दिया, ऐसा उलाना दिया। बेचारे उद्धव जी कहने लगे देखो जी, मैं तो ज्ञान को बहुत ऊंचा मानता था, लेकिन आज हमको लगा कि प्रेम की दुनिया कुछ अलग ही है। आए लूट लज्जित नवाए नैन उदो, अब सब सुख साधन को सूदो सो जतन ले। एकदम सीधे होकर के उद्धव जी भगवान के पास आए। कहे रत्न ना कर गवाए गुण गौरव, गर्व गड्डी को पूरी पूरन पतन ले। छाए नैन नीर पीर कसक कमाए उर दीनता अधीनता के भार सुन तन ले प्रेम रस रुचि विराग तू मड़ी में भरी ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सु रतन ले। ज्ञान की गुदड़ी तभी अच्छी लगती है जब इसमें प्रेम अनुराग का रतन होता है, तब ये गुदड़ी बिना रतन के अच्छी नहीं लगती। आकर के भगवान के चरणों में गिर गए महाराज। अब मुझे पता चला कि ज्ञान और जो है प्रेम में प्रेम कितना महान होता है। ज्ञान के लिए मनुष्य को प्राप्त परिस्थिति को छोड़ करके नई परिस्थिति बनानी पड़ती है और प्रेम के लिए जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति को प्रेम का साधन बना सकता है। गोपियों के अंदर कोई हमने धन बल नहीं देखा, कोई धन नहीं, कोई पक्का मकान नहीं। देखो आपको मथुरा के बहुत बड़े बड़े महलों का वर्णन भागवत आदि शास्त्रों में मिलेगा। द्वारिका में तो मिलते ही है, द्वारिका के महल तो आज भी विदेशी लोग वहां के समुद्र के नीचे खोज करके कह रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा नगर डूबा हुआ है द्वारिका में। अमेरिका वगैरह ने सब ने ये बात घोषित की है कि आपके यहाँ बहुत बड़ा अंदर नगर डूबा हुआ है। लेकिन ब्रज के अंदर बहुत बड़े बड़े मकान और अट्टालिकाएं और ऐसा कोई साधन नहीं, बल्कि वहां तो घोष मिलता है घोष। घास फूस के मकान, तभी तो भगवान बालक थे तब वे वृंदावन में आए, वृंदावन में, और कह रहे हैं वहां हम वृक्षों के नीचे अपना बना लेंगे, झोपड़ी बना लेंगे, गैये चरा लेंगे, यमुना नदी का पानी पास में है ही, यहाँ कंस के लोग ज्यादा आने लगे, अपने वृंदावन में चल चल। तो वृंदावन में आ गए, ऐसे पक्के मकान होते, महल होते, जबकि नंद राय जी कहलाते, नंद राय जी, नंद जी वहां के राजा थे, राय माने राजा, और छोटा मोटा राजा नहीं होता है, राय होता है बड़ा राजा। नंद जी के पास कौन सा स्टेट था, गाय सबसे ज्यादा थी, गाय 9 लाख गाय थी उनके पास। गाय ज्यादा होने से नंदलाल जी, नंद राय जी वहां राय राय कहलाते थे, बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े धनी, बहुत बड़े राजा नंद जी, और बाकी कोई किसी गोपी के पास कोई पक्का मकान नहीं। ब्रज के अंदर कोई पाठशाला नहीं, ब्रज के अंदर कोई विशेष ब्राह्मण पंडित कर्मकांड नहीं, ब्रज के अंदर कोई यज्ञ वगैरह नहीं। देखा जाए लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज और मथुरा, इनके अंदर मथुरा में बहुत सुविधा है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं, नहीं। क्योंकि यहां केवल भगवान का प्रेम था, उस प्रेम के सामने गोपियों ने कभी भी अपनी निर्धनता के अंदर दुख नहीं उठाया कि हमारे पास कुछ ये नहीं है, हमारे पास धन की कमी है, किसी गोपी का नाम नहीं इसमें, किसी गोपी के पीहर का नाम नहीं, किसी गोपी के पति का नाम नहीं, किसी गोपी के कोई किसी का नाम ही नहीं। परिवार में, मित्रों में तो 2-4 नाम आ जाते हैं, भगवान के श्री नाम आ जाता है, एक दो और कोई नाम आ जाए तो आ जाए, गोपियों में किसी का भी नाम नहीं। उन गोपियों के मुख से जब भगवान के विरह की बातें सुनी तो उद्धव जी ने कह दिया कि हे गोपियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मुझे कृष्ण के विरह की भक्ति का पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ मेरे समझ में आ नहीं सकता था, आपका जीवन देखा तब मुझे लगा। फिर भगवान की कितनी कितनी लीलाएं यहां ब्रज में हुई, एक एक गोपी से सुनी उन्होंने, उद्धव जी ने कहां क्या हुआ, कहां क्या हुआ। कई गोपियां तो कथा कहते 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 एकदम चुप हो जाती है, यहां भैया ने उसको डांटा था, यहां भैया ने उसको बांधा था, यहां हमारे साथ बंसरी बजाए थे। वो और कुछ पूछना चाहते हैं, गोपियां स्तब्ध हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकती है। उद्धव जी ने सारी कथा सुनी और सुन करके उनको वापिस सुनाई कि तुम बैठो, हम तुमको कथा सुनाते हैं। कथा सुनाई, जो जो कथा सुनाते गए उनके अंदर भगवान का प्रेम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंत में उद्धव जी के हृदय में ये बात जच गई कि भगवान भक्त से प्रेम कम करते हैं और भक्त भगवान से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये जच गई उद्धव जी के मन में। तो फिर भगवान से पूछा, महाराज ज्ञान मार्ग में तो योग वियोग होता नहीं, भक्ति मार्ग में योग वियोग होता है, इसमें आपकी अपेक्षा भक्तों में ज्यादा प्रेम होता है कि आप में ज्यादा प्रेम होता है? भगवान कहने, देखो उद्धव, तुमने क्या निर्णय किया कि मैंने तो ये निर्णय किया भक्तों में ज्यादा प्रेम है, आप में इतना प्रेम नहीं है। भगवान ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम भक्तों में प्रेम ज्यादा है, मान लो कि मानने में आता नहीं, क्योंकि भक्त में प्रेम आएगा कहां से? खेड़ी में पानी तो कुएं से आएगा ना, तो भक्त के अंदर प्रेम तो आप देते हैं तब आता है, और आपके अंदर प्रेम ज्यादा है तब आप गोपियों को प्रेम देते हैं। भगवान ने कहा कि भाई मेरे से पूछोगे तो मैं गोपियों का नाम लूंगा, गोपियों से पूछोगे तो वो मेरा नाम लेंगी, ये तो तुम्हारे ही खोजने का विषय है। उद्धव ने कहा, महाराज मेरी बुद्धि काम नहीं करती। क्यों? तुम तो ज्ञान के तत्व को जानने वाले हो ना, ज्ञान के तत्व को तो मैं बता सकता हूं, प्रेम के अंदर तो महाराज में उलझ गया, नहीं बता सकता। प्रेम रस रुचि रंबिराग तू मड़ी में पूरी, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन लय। ये जो विरह होता है प्रेम, कैसा रोना धोना होता कैसे? सच्चिदानंद में आप तो भी रोना होता है। फिर भगवान ने समझाया कि देखो ये रोना और प्रेम का रोना बहुत रात दिन का अंतर है, ये हंसना लौकिक हंसना और मेरे प्रेम में हंसना ये अलौकिक होता है। तब जाकर के उद्धव जी के समझ में आया कि वास्तव में प्रेम भगवान देते हैं, उनके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया। ज्ञान योग के अंदर बड़े प्रवीण थे ये उद्धव, वो अब प्रेम रंग में डूब गए। इतना प्रेम हुआ उद्धव जी का, इतना प्रेम हुआ कि द्वारिका में जब ब्रह्मा आदि देवता आए, उन्होंने कहा कि 125 वर्ष हो गए, अब आप चलो यहां से। उद्धव जी ने कहा, महाराज मैं तो आपको छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, आप जाओगे वहां मैं साथ में चलूंगा। तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। देखो प्रेम, इतने बड़े प्रेमी को ज्ञान देने की क्या जरूरत? प्रेम प्रेम की जगह प्रेम होता है और ज्ञान की जगह ज्ञान होता है। जब तक तुम्हारा शरीर में भाव था कि शरीर मैं हूं, ये क्या दूसरी चीजें, मतलब शरीर के समान ही तुम दूसरा व्यवहार देखते थे ना, इसलिए वहां भक्ति की जरूरत है। और जब तुम मेरे साथ हरदम रहने की बात करते हो, वहां पर तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। इस प्रकार से भगवान को वह ज्ञान देना पड़ा कि उद्धव तेरा और मेरा कभी वियोग हो सकता है क्या? तेरा और मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता। खूब बढ़िया ज्ञान की बातें कही और वे उद्धव जी वहां से रवाना हुए। रवाना होते होते चलते वो जा रहे थे अलकनंदा के किनारे। भगवान की वही आज्ञा थी बद्रीनारायण की तरफ। रास्ते में गंगा के तट के ऊपर, यमुना के तट के ऊपर मिल गए विदुर जी महाराज। ओ उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी। विदुर जी तो बड़े प्रसन्न हुए। विदुर जी ने, उद्धव जी ने देखा कि विदुर जी मिले हैं, बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब ज्यादा समय कहां लगा है। लंबी चौड़ी बातचीत नहीं की। उद्धव जी तो खड़े रहे और विदुर जी ने कई प्रश्न किए, ज्यादा जवाब नहीं दिया, थोड़ी सी कृष्ण कथा कही, रवाना हो गए। विदुर जी ने कहा, महाराज मुझे ज्ञान दो, कथा सुनाओ, आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया। कहा कि ज्ञान कोई दिया थोड़ी जाता है, ज्ञान देने लेने की चीज नहीं होती। तुमको कुछ सुनना है तो मैत्री जी से सुनो, अपने अंदर ही ज्ञान का अनुभव करो। इतने उद्धव जी महाराज भगवान के प्रेमी भक्त कि वे आधे शरीर से वह बद्रीनारायण रहते हैं और भाव शरीर से वे गोवर्धन पर्वत की तलहटी में रहते हैं। वो ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते, भाव शरीर में। आज भी यदि कोई उद्धव जी का दर्शन करना चाहे तो उद्धव जी के दर्शन होते हैं। जैसे भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे बहुत ऊंचे प्रेमी लोगों को उद्धव जी के दर्शन हुए हैं। जैसे रामचरित्र को सुनने के लिए हनुमान जी रसिया हैं, रामचरित्र सुनबे को रसिया हनुमान जी, ऐसे भागवत के रसिया है उद्धव जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आकर बैठते हैं और सुनते हैं। इसी प्रकार से जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां वहां उद्धव जी आकर भाव शरीर से आकर भागवत के रस से भी तृप्त होना चाहते हैं। यह ऐसा रस है कि इसको पीते रहो तृप्ति होती नहीं और रस खत्म होता नहीं। जैसे किसी की प्यास तो बुझे नहीं और पानी खूब है, प्यास बुझ जाए तो फिर पानी का स्वाद नहीं आता। पानी का स्वाद है, अच्छा जल है, लेकिन प्यास नहीं है, अंदर जगह नहीं है, क्या करें। यहां खूब प्यास है, इसमें तो जितना रस पीते हैं उतनी प्यास बढ़ती है और जितनी प्यास बढ़ती है उतना रस बढ़ता है। विचित्र ये भगवत रस है, भगवान का प्रेम रस है। इसकी कोई इसकी शानी नहीं, कोई उदाहरण नहीं, कोई इसका मेल नहीं किसी के साथ, कैसा बताए इसे। तो उद्धव जी गोवर्धन की तलैटी में भी रहते हैं और उद्धव जी बद्रीनारायण भी रहते हैं। जब भगवान का प्रपौत्र अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ पांडवों के द्वारा राज तिलक को प्राप्त हुआ, उसके बाद वो ब्रज भूमि में दर्शन करने आया था, तो वहां उद्धव जी से उनकी खूब बातचीत हुई कि अरे मेरे प्रपितामह कृष्ण के दर्शन, कृष्ण के परम मित्र, कृष्ण के आत्मी, ये ओहो उद्धव जी महाराज। ऐसे उद्धव जी महाराज थे। उद्धव जी महाराज का ये प्रसंग नाभा जी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज्ञानी से प्रेमी बने, ज्ञानी से प्रेमी भगत बने। तो उद्धव जी का इतना ही आता है। देखो इन लोगों का आगे पीछे का जीवन नहीं आता, पहले क्या थे आगे क्या हुए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे गजेंद्र के लिए बताते हैं कि पहले ये पांड्य देश का राजा था, गजेंद्र पांड्य देश का राजा, इसका नाम इंद्रद्युम्न था। राजपाट बाल बच्चों को देकर जंगल में गया और भगवान का भजन करने लगा। देखो एक होती है भक्ति जो संतों से महात्माओं से सुनी हुई होती है, एक होती है भक्ति जो अपनी मर्जी से की हुई होती है। इसलिए कहते हैं हमारे शास्त्रकार कि सत्संग सुनो, सत्संग के बिना किसी साधन को जो है हम पकड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भूल रह जाएगी। यद्यपि वो भूल भगवान निकाल देते, समय लगता है, परंतु सत्संग के द्वारा समझा हुआ जो साधन होता है उस साधन से कभी आदमी ठोकर नहीं खाता। कोई सा भी साधन करे, ज्ञान का साधन हो चाहे भक्ति का साधन हो चाहे योग का साधन हो चाहे कोई भी साधन हो, सत्संग के प्रकाश में उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे आदमी के अंधेरा है, आदमी के हाथ में लाइट है, उस लाइट में प्रत्येक चीज को देखते देखते चलेगा कि भाई कहीं कोई सांप तो नहीं, बिच्छू तो नहीं, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, कोई और तो नहीं, सब चीज को देखते चलता है। वो एक बैटरी के प्रकाश में सब दिखता है। ऐसे सत्संग के प्रकाश से आदमी को चलना चाहिए। अब उन्हें कहा सब राजपाट तो छोड़ दिया और हम भगवान की आराधना कर रहे। कैसे आराधना की जाती है? उठना बैठना नहीं आता, कायदे से भोजन करना नहीं आता, कायदे से उसको किस प्रकार से व्यवहार करने चाहिए, बड़ों के साथ कैसा, छोटों के साथ कैसा। जो आदमी व्यवहार के अंदर परमार्थ को नहीं निभा सकता वो आदमी कहीं पर भी परमार्थ को नहीं निभा सकता। ये व्यवहार क्या है? तो व्यवहार और परमार्थ दो अपने समझने के लिए माने, वास्तव में ये परमार्थ ही है। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, किसी के साथ भी हमारा व्यवहार होता है वो क्या समझ के करना चाहिए। हमने सोच लिया कि संसार के साथ तो व्यवहार अलग होता है, भगवान के साथ व्यवहार अलग होता है, तो इस भुलाव के अंदर हमारे कई जन्म बीत जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता। बहुत से लोग मानते हैं कि भाई देखो व्यवहार में हमको कहीं क्रोध करना पड़ेगा, कहीं लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, देखो थोड़ा बहुत तो लोभ रखना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो संसार की इच्छाएं रखनी पड़ेंगी, दुकानदारी में बैठे लोभ नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, काम कैसे चलेगा? पैसा तो होना चाहिए ना, पैसे बिना किसका काम चलता है? ठीक है, त्याग की वैराग्य की बातें बहुत अच्छी है, होनी चाहिए, पर देखो अब बिल्कुल ही थोड़े ही ऐसा होता है कि एकदम ही लोभ निकाल दो और एकदम ही राग निकाल दो और द्वेष निकाल दो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा मानते हैं, ऐसी अंदर धारणा बनाई और अब साधन भजन भी करते हैं, साधन भजन भी करते हैं और कह रहे धन के बिना काम नहीं चलता, कुटुंब के बिना काम नहीं चलता, कोई सेवा करने वाला हो उसके बिना काम नहीं चलता, सेवा करने वाला भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, थोड़ी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, ये दोनों चीजें, इधर परम भजन भी होना चाहिए, ये भी बात है। तब तक क्या होता है, पूरी उसको पूरा रास्ता साफ दिखने में नहीं आया। जैसे आदमी गहरी नींद में सोता है और जब वो थोड़ी देर उठता धीरे धीरे आंख खुलती है उसकी आलस से, न तो वो पूरा जगा हुआ ही है और न वो पूरा सोया हुआ ही है। वो जो स्थिति होती है उस स्थिति में है हम लोग आजकल जो सत्संग करते हैं, हम उस स्थिति में है, न तो पूरे जगे हुए हैं और न पूरे सोए हुए हैं। आलस आता है, अंगड़ाई लेते हैं, थोड़ी थोड़ी नींद भी आती है, थोड़े जगे भी रहते हैं, कोई कोई थोड़ा बोलता है तो हाँ बोलो बोलो क्या बात है, क्या आप सो रहे हो? नहीं नहीं सो नहीं रहे, आप देखो आप बोल रहे हो सुन रहे हैं, और एकदम अलर्ट भी नहीं है, सावधान भी नहीं, नींद भी आती है, ये दोनों अवस्था होती है। ये आजकल हम लोगों में यही रिवाज है। संसार को प्रिय सत्य और उपयोगी मानते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। उसने तो अपनी तरफ से पूर्ण वैराग्य रखा, गजेंद्र साहब लोग मैंने राजपाट सब छोड़ दिया, बाल बच्चों को सुपुर्द कर दिया, देखो भजन करता हूं। लेकिन गलती क्या हुई कि वहां अगस्त ऋषि आए, उस रास्ते से अगस्त ऋषि आए तो बैठे ही रहे कि मैं तो भजन करता हूं, भजन का काम बड़ा है। वो बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ, तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया, रे मूर्ख हाथी की तरह तू बुद्धि वाला, चल हाथी हो जा, हाथी हो जा। उसने कहा महाराज आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए, मैं यहां कल्याण करने के लिए आया था, आप मुझे हाथियों में भेजते हैं, जाना ही पड़े, आपको छोड़कर कहां जाए, परंतु लोग क्या कहेंगे कि देखो एक संत का दर्शन किया और मनुष्य से हाथी बन गया, इसमें आपकी भी इज्जत जाएगी और भगवान की भक्ति की भी इज्जत जाएगी, मैं तो भक्ति के लिए बैठा था। अगस्त ऋषि ने कहा कि थोड़ा व्यवहार तो अच्छा करना चाहिए ना, तूने तो मेरे लिए किया कोई बात नहीं, और किसी ऋषि के आने पर ऐसा बैठा रहेगा तो तेरे को क्या पता और उल्टा पुल्टा साप दे दे, मैं तो तेरे कहने से वरदान भी दे दूंगा कि जाओ भगवान के सुदर्शन चक्र से तेरा तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान के दर्शनों से कल्याण हो जाएगा। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा बर्ताव करते तो क्या पता कल न कोई तुमको और भी कठोर श्राप दे सकता था, इसलिए कहता हूं व्यवहार को सुधारो। इधर तो ये बात हो गई, फिर वो अगले जो है अपने हाथी की योनि में चला गया, सभी जानते हैं। और वो हाथी भी कहां, त्रिकूट पर्वत का हाथी बना, क्षीर सागर के अंदर एक पर्वत है वहां का हाथी बना, और जल पीने के लिए गया तालाब में, वहां पर मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। ये सब कथा जानते हैं, पर इसका एक रहस्य समझना चाहिए। रहस्य क्या है कि वो जो मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया हाथी का, और हाथी ने भगवान को घबरा करके याद किया, घबरा करके सबकी सहायता से जब निराश हो गया, निराश होकर के जो भगवान का नाम लिया जाता है ना, वो नाम आधा नाम भी उद्धार करने वाला होता है, आधा आधा। लीजिए नाम निराश, किसी से कोई आशा नहीं किसी से, अरे अब अपने कल्याण में केवल भगवान की आशा है। सेठ जी ने कहा अपने कल्याण की भी आशा मत रखो भगवान से। महापुरुषों की बातें एक एक से एक एक आगे निकलती, इनमें कोई अंत नहीं आता इन भावों का, भावों का अंत नहीं, क्या क्या नई नई बातें सोचते रहते हैं संत महापुरुष। हमको तो भगवान से ये भी नहीं कहना है कि हमारा कल्याण कर दो, क्यों करो कल्याण, नरक में भेजो तो भेजो ना, आराम से नरक में भेजो, मर्जी आए जहां भेजो, मर्जी आए जो करो, बस इतना है कि हम आपको याद रखें, भूले नहीं, बस याद रखें। सेठ जी ने कहा कि जय और विजय की सब आलोचना करते हैं, पर एक जगह हमको जय विजय बड़े अच्छे लगे। सेठ जी ने कहा जय और विजय हमको अच्छे लगे, क्या तीन जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ, सनकादिकों ने श्राप दे दिया, पर जय और विजय ने भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु आप हमको वहां दर्शन दो, तीन जन्म तक आप हमको दर्शन दो, तीन जन्म के बाद आप हमारी मुक्ति कर दो। ये कहानी तीन जन्म के बाद क्या होगा ये शंकादिकों ने नहीं कहा कि तीन जन्म तक तुम राक्षस रहोगे, उसके बाद भगवान ने देखा कि उसके बाद यदि इनके कर्मों का वापस पुराना लेखा जोखा ले तो मुश्किल हो जाएगी विचारों के। दुनिया के अंदर एक गलत संदेश जाएगा कि बैकुंठ में जाने वाले लोग जिनके कर्म धर्म सब खत्म हो जाते हैं उनके भी कर्म वापस उखड़ जाते हैं। एक बार जो फैसला हो गया सो हो गया सो हो गया, अब उसको दोबारा नहीं उखाड़ा जाता। लेकिन हमारे यहां तो बैकुंठ की सब मर्यादा खत्म हो जाएगी। तब भगवान ने ही कहा कि महाराज तीन जन्म के बाद ही वापस यहां मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो आप। और तीन जन्म तक इनके पास मैं आऊंगा, इनका उद्धार करने के लिए मैं ही आऊंगा। इन्होंने नहीं कहा, जय और विजय सेठ जी ने कहा, जय और विजय ने नहीं कहा कुछ भी कि तीन जन्म के बाद तो बाबा हमको ऐसा साप न लगे, ऐसा नहीं और वैसा नहीं, कोई शर्त नहीं, जाओ तीन जन्म तक राक्षस बन जाओ जो आगे। भगवान ने कहा कि वापिस मेरे यहां आ जाने चाहिए। भगवान से कुछ भी न मांगे तो भगवान की खलबली हो जाए। तो वो जो मगरमच्छ था वो पहले एक हूहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि का स्नान करते हुए पैर पकड़ लिया। देवल ऋषि ने कहा कि अरे तू मेरे से मजाक करता है, हंसी मजाक तो अपने से बराबर के हो, अपने से छोटे हो उनके साथ किया जाता है, जा तू मगरमच्छ बन। उसने भी यही प्रार्थना की कि महाराज संतों का क्रोध तो सुधार के लिए होता है, जैसे माँ बाप का क्रोध बच्चे के सुधार के लिए होता है, दूसरे आदमी का क्रोध बच्चे को बिगाड़ के लिए होता है। इसका कुछ बिगड़े तो अच्छा प्रसन्न हो। दुनिया में देख लो माता पिता आत्मीय जन किसी को कुछ दंड भी देंगे तो उसके सुधार के लिए देंगे, और दूसरे लोग जो होंगे वो आदमी को विपत्ति में पड़ा हुआ देखकर वो खुश होंगे, हाँ नहीं नहीं अच्छा हुआ अच्छा हुआ, जिसके साथ तो जैसा हो उतना ही अच्छा। तो महाराज अब आपने साप तो दे दिया, मेरे पर थोड़ी कृपा भी करो। देवल ऋषि ने कहा कि ठीक है, सुदर्शन चक्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा इसी जोड़ी में, मगरमच्छ की जोड़ी में। तो मगरमच्छ भी यहीं आया भगवत प्रेरणा से, इसी त्रिकूट पर्वत के वहां वरुण देवता का जलाशय था, उस जलाशय में ही वो रहता था मगरमच्छ। इधर से हाथी आया पानी पीने लगा, पैर पकड़ लिया मगरमच्छ, खूब दोनों की जम करके लड़ाई हुई। भगवान आए, हाथी कही धाई हरी गज के देख निराश। जब हाथी ने निराश होकर के भगवान का नाम लिया, एकदम निराश, तो भगवान इतने जल्दी रवाना हुए, हा उबरियो निज धाम में, हा उछरियो निज धाम में, हाथों में अपने धाम बैकुंठ में बोले, और थी हाथी के पास। और हाथी लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो, हाथी के पास जा रहे हो, तो हाव तो बोले बैकुंठ में, थी बोलत गजर पास। यहां कहते हैं हाव उछरी हो निज धाम में और थी हाथी के पास। हाथी गरुड़ वरुण सब फैल हो गए उस दिन। उतर करके भगवान ने सूंड पकड़ी हाथी की, बार निकाला और सुदर्शन चक्र का प्रहार किया मगरमच्छ पर, मगरमच्छ का उद्धार हुआ। अब तक हाथी का उद्धार नहीं हुआ था, पहले मगरमच्छ का उद्धार हुआ और फिर हाथी का उद्धार किया भगवान ने। मगरमच्छ का उद्धार पहले क्यों किया कि मगरमच्छ ने भक्त की शरण ली है, भगवान की शरण नहीं ली, भक्त की शरण, और हाथी ने भगवान की शरण ली है। भगवान यकस्तनेशो मलिलोंतको रकार प्रचंड वेगा दविधावत द्विषम भीतम प्रपन्नम परपाई। मैं मरा डरा हुआ हूं, मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई असहाय, एक प्रभु असहाय में। तो हाथी तो भगवान की शरण में और मगरमच्छ है वो हाथी की शरण में, भक्त की शरण में। तो भक्त की शरणागति बड़ी होती है, इसलिए भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ उसको निकाल भी लिया तो उसका कल्याण नहीं हुआ। तब तक पहले सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का कल्याण किया, फिर उसके बाद भगवान उस हाथी को कहे कि चलो तुम मेरे धाम में चलो, मेरे धाम में। तो हाथी को भगवान ने लेकर के और फिर वहां गरुड़ के ऊपर उसको रख दिया और अपने धाम में ले जाकर के उसको वहां अपना पहरेदार बना दिया, अपना वहां काम करने वाला बना, पार्षद बना दिया। तो भगवान से बड़ी होती है भक्त की शरणागति। कई जगह ऐसी भी कथा आती है कि मरुदेव का एक राजा था, वो यज्ञ किया, यज्ञ उसमें दो ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण ब्रह्मा बना और एक होता बना। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये चार वेद के क्रियाओं के चार चार आचार्यों के नाम होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। तो उन्होंने जो यज्ञ करवाया उसमें होता और उद्गाता ये दोनों भाई भाई थे, भाई भाई थे। तो खूब अच्छे आराम से यज्ञ हो गया, यज्ञ के अंदर दक्षिणा दे दे, तो ब्रह्मा को दक्षिणा कम मिली और होता को ज्यादा मिली। होता का तो ब्रह्मा और होता इन दोनों ने क्या किया कि अपन दोनों की दक्षिणा एक कर लो और फिर उसको आधी आधी बांट लो। पर जिसके पास ज्यादा आया था होता कि उसने कहा नहीं मैं नहीं बांटूंगा, मेरे को तो आया से इतना मिला। तो ब्रह्मा ने शाप दे दिया कि जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ, तुम्हारा मगरमच्छ की तरह लोभ ज्यादा है, तुम मगरमच्छ बन जाओ। उसने कहा तुम हाथी बन जाओ। दोनों हाथी बन गए, एक हाथी बन गया एक मगरमच्छ हो गया। पर दोनों ने यज्ञ किया था, यज्ञ के अंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए आहुतियां दी थी, इस कारण से यहां पर भगवान आ गए, ऐसा मानते हैं। देखो चाहे कुछ भी हो, इतना तो मानना पड़ेगा कि किसी भी जन्म में की हुई भक्ति बेकार नहीं जाती थी। हम कितना ही धन कमा लें आज, कितना ही बड़ा धनी हो जाए, कितना ही बड़ा धनी, लेकिन मरते ही वो किसी भिखारी के घर जन्म ले सकता है। उसी घर के सामने आकर वो रोटी रोटी मांग सकता है, उसी के ही बेटे उसको दुत्कार करके निकालेंगे, निकलो यहां से, ऐसा हो सकता है। न तो बेटे को पता है कि मेरा बाप है, न बाप को पता है कि मेरा बेटा है, कुछ पता नहीं। इस संसार में भगवान को भूलने के बाद सब कुछ भूला जाए, कुछ पता नहीं रहता है। बहुत बड़ा धनी आदमी मरते ही वो गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर के रोटी रोटी के लिए तरस सकता है, मर सकता है। परंतु कितना ही कोई कम भक्ति करने वाला हो, कितना ही हो, उसको अगले जन्म में जितनी भक्ति कर ली वो सुरक्षित मिलती है। इसलिए गीता कहती है पार्थ नैवे है नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो अपना स्वभाव जितना सुधार लेता है, वो सुधरावा स्वभाव जितना सुधार लिया उसको आगे वैसा ही मिलता है। महाराज श्री उदाहरण देते थे कि किसी आदमी के घर में कई गायें हैं, कई बैल हैं, तो उनके अंदर देख लो अलग अलग स्वभाव मिलेगा। एक गाय है बिल्कुल सीधी साधी है, एक सिंग मारती है, एक बैल है खूब काम करता है सीधा साधा, एक बैल है तो फुफार करता रहता है। ऐसे ही कुत्ते हैं, उनमें कई कुत्ते ऐसे सड़क के किनारे पड़े हैं, गाड़ियां जाती घबराते नहीं है, और कहीं थोड़े थोड़े घबराते हैं, दौड़ते हैं, भूखते हैं। हर योनियों में रहने वाले जीव जंतुओं का स्वभाव अलग अलग होता है। ये स्वभाव अलग अलग कहां से आया? मनुष्य शरीर से आया है, मनुष्य शरीर से इनके स्वभाव बने। तो हम मरेंगे तो हमारा स्वभाव साथ में जाएगा। जिसके स्वभाव में भगवान की भक्ति बड़ी बैठी हुई है और जितना उसका स्वभाव पवित्र हो गया उतना उसका पवित्र स्वभाव आगे भी उसको तैयार मिलेगा। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि जितना धन कमा लोगे, जैसे सुविधापूर्ण जीवन में रहे हो ऐसी सुविधा आगे से आगे उसको मिलती रहेगी, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। कम से कम अपने सनातन शास्त्र में तो ये है नहीं। सनातन धर्म के अलावा कई धर्म ऐसे हैं जो लोक परलोक को नहीं मानते। हमारे ऋषियों ने बहुत गहराई से विचार किया है धर्म के विषय में, बिना किसी पक्षपात के बात नहीं है, बहुत गहरा विचार किया। इतने दर्शन, इतना गहरा विचार, इतना दार्शनिक चिंतन किसी भी धर्म में नहीं हुआ जितना अपने यहां हुआ है। क्योंकि सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म ये भगवान से चला है। जितने सनातन धर्म के अतिरिक्त जितने धर्म है वो किसी व्यक्ति से चले हैं। व्यक्ति होगा वो भगवान थोड़े ही होगा, उसकी तो बुद्धि सीमित ही होगी। जितने धर्म है वो व्यक्ति से चले। सनातन धर्म में एक व्यक्ति नहीं मिलता, सनातन धर्म के अंदर भगवान मिलते हैं मूल में। इसलिए भक्ति का जो धन है ये हमारे आगे भी सुरक्षित रह सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। इसलिए हमारे स्वभाव के अंदर भक्ति का प्रभाव, भक्ति का संचार अवश्य होना चाहिए, और वो सत्संग के द्वारा सुन करके समझ करके भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। अब आगे पांडवों की कथा बताएंगे। जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घनश्यामा।